ओम शांति। वारिस आत्मा की क्वालिफिकेशन क्या है? वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे वारिस बच्चे ही हैं, क्योंकि आज की मुरली के हिसाब से अगर देखें तो आज सवेरे बाबा ने कहा कि कोई तो ब्राह्मण 10% है और कोई तो ब्राह्मण 99%। तो ब्राह्मण, आज सुबह से ये विचार चल रहा था कि क्या ब्राह्मण में भी परसेंटेज हो सकता है ऐसा, 10% और 99%। तो जरूर है कि वारिस क्वालिटी तो वही आत्माएं हैं जो 99% है। 10% आत्मा को क्या कहेंगे? वारिस क्वालिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि वारिस आत्माओं के जो विशेषताएं हैं तो वो ऐसी क्या ऐसी बात है कि जिस कारण से वो वारिस बन गए। तो सबसे पहली बात कि वारिस आत्मा बाबा के वही है जो भगवान को वारिस बनाते हैं। बाबा की उस दिन की मुरली चली संडे की, सर्व संबंध बाबा से कैसे निभाना है, और इसीलिए बाबा हमेशा सर्व संबंध की जब बात करते हैं तो उसमें बाबा को बच्चा बनाना ये संबंध बाबा हमेशा बताते हैं। कि कई बार कई लोग सोचते हैं बाप टीचर सदगुरु ये संबंध तो ठीक है, लेकिन बच्चे का संबंध कैसे बाबा के साथ जोड़े? लेकिन जब तक हमने भगवान को वारिस नहीं बनाया तो हम वारिस कैसे बनेंगे उसके? भगवान को वारिस बनाना मतलब जैसे उसके प्रति कुर्बान जाना, उसकी सेवा के प्रति कुर्बान जाना। एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। रात को नींद त्याग करनी पड़ती है उसको, तो त्याग करती है, वारिस है घर का। इसीलिए है ना, तो जहां हर प्रकार की बात त्याग करने में भी सुख का अनुभव हो, ये है वारिस। के जहां बाबा के लिए हम बच्चों को अगर कोई भी चीज त्याग करनी पड़े लेकिन उस त्याग में भी सुख का भाग्य अनुभव हो, कि कितना बड़ा भाग्य बाबा दे रहा है। वो त्याग त्याग न दिखाई दे, न खुद को न औरों को। कुछ समय पहले हम सब बड़ी बहनें आपस में बैठे थे, चिट चैट कर रहे थे, तो उसमें हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी जो है बॉम्बे के, तो एक बात यही कहा कि आज हर ब्राह्मण को अगर देखा जाए तो बाबा ने सब कुछ दे दिया है, दिया है सब कुछ। बाबा के बने उसके पहले की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाए और अभी की क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो बाबा ने हर बच्चे को जो जीवन की आवश्यकता के हिसाब से उससे अधिक ही दिया है, दिया है ना। कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई हाँ पहले मेरे पास ज्यादा था और अब कम है, नहीं, पहले जो था उससे अधिक ही बाबा ने दिया है सब कुछ। तो कहा यही तो बाबा की परवरिश साकार में भी अभी चल रही है। ये नहीं कह सकते हैं कि साकार बाबा थे तभी परवरिश बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी भी वो साकार में ही परवरिश हो रही है हमारी, क्योंकि हम सभी वारिस हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को वारिस के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन हमने बाबा को कितना वारिस के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए परसेंटेज हो गए। जो 99% और 10% की जो आज बाबा ने बात किया वो इसीलिए है कि हमने स्वीकार नहीं किया है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि एक है जानना, एक है मानना और एक है स्वीकार करना, है ना, स्वीकार करके चलना उसके ऊपर। तो बाबा को जान तो लिया, मानते भी हैं, परंतु स्वीकार करना और सर्व संबंधों को जोड़ना और उस तरीके से उसके साथ निभाना, ये है वारिस में अंतर हो जाना। तो वारिस जो है 99% वो निभाते हैं। तो जहां बाबा को हम वारिस बनाते हैं तो हर रीति से हम क्या करते हैं, कुर्बान जाते हैं। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे पर, पता नहीं है वो बच्चा क्या होगा, कैसा होगा, क्या देगा बाद में, आंसू देगा या फूल देगा ये भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं उस बच्चे के ऊपर। ठीक इसी तरह यहां तो हमें गारंटी है कि बाबा हमें कभी आंसू देने वाला नहीं है, लेकिन मैंने बाबा के ऊपर अपने आप को कितना कुर्बान किया, उस अनुसार त्याग किया, और त्याग में भी सुख का अनुभव करना, और हर कोई भी ये महसूस करे कि कितना सुखी हो गया बाबा को पाके, ये न कहे कि अरे भगवान का बनने के बाद भी उसको इतना ही दुख मिल रहा है, पहले से ज्यादा दुख मिल रहा है, नहीं। तो हमारे चेहरे से ऐसी खुशी टपके उसको पाने की, तो इसीलिए कहे एक है जानना, एक है मानना, एक है स्वीकार करके निभाना, और लास्ट है प्राप्ति का अनुभव करना। पांचवी स्टेज ये है, प्राप्ति का अनुभव करना। वो प्राप्ति की जो फीलिंग है वो हर एक को नजर आए हमारे चेहरे से, उस खुशी की अनुभूति दूसरों को भी हो, किसको बहुत कुछ मिला है बाबा का बनने, ये चेहरा उसका बता रहा है, तभी तो उसको भी लगेगा कि मैं भी जाऊं। नहीं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, आपको क्या मिला, भगवान का बने हैं आपको क्या मिला, हमें भी पता तो चले। कहते हैं कि नहीं, आपके घर में अगर छोटे भाई बहने हो या बच्चे हो, अगर उनको कहने जाते हैं कि चलो आप बाबा का ज्ञान सुनो, तो क्या कहते हैं, आपको क्या मिला है जो हम सुने, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वो फीलिंग हमारी इतनी खुशी की अंदर में जो है, प्राप्ति की अनुभूति की फीलिंग, वो उनको महसूस हो, उनको भी मन हो मुझे भी ये प्राप्त हो, मैं भी ये प्राप्त करना चाहता हूं। इसीलिए ये 10% और 90% के बीच में जो नंबर बने हैं उसी के आधार पर बने हैं। तो सबसे पहले जो कहा, बाबा को वारिस बनाना और उस संबंध को निभाते हुए, स्वीकार करते हुए, निभाते हुए उसकी प्राप्ति की अनुभूति की फीलिंग में रहना। दूसरी बात कि जिस तरह वारिस के पीछे माँ बाप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, दुनिया में लुटाते हैं ना सब कुछ, हमको लुटाना नहीं है, लेकिन हम बाबा को वारिस बनाकर अपना सब कुछ सफल कर देते हैं। दादी की बात याद आती है, प्रकाशमणि दादी जब थे तो दादी हमेशा कहती थी कि बाबा का बनने के बाद हम सब 5 सफल करते हैं। 5 सफल करते हैं, कौन से 5 स, समय, संकल्प, श्वास, शक्ति और संपत्ति। संपत्ति दादी हमेशा लास्ट में कहती थी, लेकिन पहले तो हम ये सब सूक्ष्म अपना जो खजाना है उसको सफल करते हैं, लास्ट में स्थूल का जाना आता है। और उसकी प्राप्ति बाबा हमें कितनी कराता है इस जन्म में और अनेकों जन्म में, समय, जो समय को सफल करता है तो वो उसको कभी भी समय पर धोखा नहीं मिलता है। समय उसके लिए हमेशा कल्याणकारी ही अनुभव होगा। उसके मन में ये कभी फीलिंग नहीं आएगी समय पर धोखा खा लिया मैंने, वो कभी भी समय पर धोखा नहीं, क्योंकि उसने हर समय उसका सफल किया है। तो उसकी प्राप्ति इस जन्म में भी ये है कि समय कभी उसको धोखा नहीं देगा, सभी समय कभी उसके लिए शिक्षक नहीं बनेगा, समय कभी भी उसको कठिनाइयों का अनुभव नहीं कराएगा, जिसने समय को सफल किया है। तो समय उसके लिए जैसे सहज सरल होता रहेगा। इसलिए कहा कि समय को सफल करने से कभी भी समय पर धोखा न मिले, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। क्योंकि समय भी जानता है कि उसने अपना समय ईश्वर के कार्य के लिए सफल किया है, तो समय उसको कभी भी कोई भी प्रकार से धोखा देने की बात नहीं करेगा कि समय पर उसको धोखा मिल गया, ये नहीं होगा। दूसरा, श्वास। जब हम श्वास बाबा की याद में सफल करते हैं तो अंतिम श्वास हमारा बहुत सुखद होगा। अंतिम श्वास जब इस शरीर से छूटेगा बहुत सुखद अनुभूतियों के साथ, अंतिम श्वास गुटखा खा के नहीं, ऐसे घुट घुट के नहीं छूटेगा। जैसे आज किसी को अगर पानी के अंदर तो कैसी तड़पन होती है श्वास छूटने में भी, ऐसे कभी उसको घुटन में श्वास नहीं छूटेगा, सुखद अनुभूतियों के साथ। कि जैसे सहज मक्खन से बाल निकल गया, श्वास ऐसे गया, बाबा की याद में जाए खुशी से, अपने दिनचर्या में भी सब ठीक ठाक करके फिर जैसे श्वास निकला, बहुत सहजता से शरीर छूटे। नहीं तो आज दुनिया में देखो लोगों को श्वास छोड़ने में भी कितनी दिक्कत हो रही है, कैसी परेशानी में, जैसे तड़प तड़प करके जैसे श्वास छोड़ना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मणों को सहज, क्योंकि श्वास सफल किए हैं। तीसरा, संकल्प। तो जो अपने संकल्पों को सफल करता है, बाबा के कार्य में, बाबा की सेवा में, बाबा के लिए हर संकल्प जिसका चलता रहे, तो अंतिम समय जो संकल्प भी है, कोई मन के अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, लेकिन सहजता से संकल्पों की भी इतनी जमा का खाता, हाथ भरपूर जिसको कहा जाए, भरपूर हाथ से जाता है, जैसे खाली हाथ नहीं जाता है, इतना उसने संकल्पों के द्वारा भी स्वयं के अंदर जमा करने का अनुभव किया है, इतना संकल्प सफल किया है। पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक श्रेष्ठ संकल्पों से अपने सारे खाते भरपूर किए हैं, तो भरतू हाथ जाता है, खाली हाथ नहीं जाता है। जैसे दुनिया के अंदर आज, क्योंकि संकल्पों की वैल्यू इसलिए ज्यादा है, क्योंकि आज जब दुनिया की आत्माओं को देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट है, और उस डिप्रेशन के कारण कितना मनुष्य नेगेटिव और वेस्ट सोचता है ना, और कितना स्वयं को दुख देता है। और ये जो शक्ति है, जो खजाना है, उसको वेस्ट कर रहा है व्यर्थ सोच सोच करके, नेगेटिव सोच सोच करके, खुद भी परेशान, घर वालों को परेशान, सबको परेशान करता है ना। लेकिन बाबा के बच्चे जो वारिस है, वो इतने श्रेष्ठ संकल्प को सदा निर्मित करते अपने मन के अंदर कि वो जैसे अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं, है ना, भरतू हाथ जाते हैं जैसे। चौथा, शक्ति को सफल करना। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, है ना, सारी शक्तियां जो है उसको सफल करने वाला, समय पर हर शक्ति उसके मदद के लिए सामने आ जाती है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि ज्ञान की शक्ति को यूज करो, जो बाबा ने हर बात का ज्ञान दिया है, तो हर ज्ञान की बात को समझते हुए उस पॉइंट को समय पर यूज करना। इसी तरह कोई भी शक्ति, सूक्ष्म हो या स्थूल शक्ति हो, लेकिन जितना उसको सफल किया है बाबा के कार्य में, तो वो शक्ति भी हमारे हर खाते को जमा करने के लिए, हमारे भविष्य को भी सुरक्षित बनाने के लिए, और वर्तमान को भी इतना ही श्रेष्ठ अनुभव कराने वाली बन जाती है। जिस समय जिस शक्ति का आवाहन करते हैं और उस शक्ति को यूज करते हैं, तो नेचुरल है कि वो शक्ति सफल हुई, तो वो शक्ति हमें कभी भी अंतिम समय ये नहीं होगा कि ये शक्ति की कमी के कारण मुझे ये सिचुएशन को फेस करना पड़ा और उसी के कारण मैंने जीवन के अंदर हार का अनुभव किया। लेकिन वो सदा उस शक्ति को यूज करते हुए विजय का अनुभव करता रहे सदा। जैसे हर शक्ति के आधार पर बाबा कहते हैं ना, सही समय पर सही शक्ति का आवाहन करो और वह हाजिर हो जाए, और उसको आप यूज करके सफलता मुहूर्त बन जाओ, तो विजय का अनुभव कराए। कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि सहन शक्ति का आवाहन करते हैं और सामना करने की शक्ति आ जाती है, सामना करने के बाद फिर होश आता है, अरे सहन करना चाहिए था, इसमें तो मैंने आवाहन भी किया लेकिन ये शक्ति आई नहीं, तो वो विजयी होने का अनुभव नहीं करता है। गलत समय पर गलत शक्ति का प्रयोग हुआ तो वो तो हार का ही अनुभव कराएगा। तो वारिस क्वालिटी जो है, क्योंकि उसकी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर है बाबा के साथ कि उस समय उसको वही टचिंग आती है कि ये शक्ति का प्रयोग करो, सर्वशक्तिमान से उस समय हमें वो शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, और वही शक्ति का प्रयोग करने से सदा विजयी आत्मा होने का अनुभव करेंगे। वारिस माने ही विजयी, हर कदम में जो विजयी का अनुभव करे उसी का नाम तो वारिस है। बार बार फेल होते रहेंगे तो क्या कहेंगे, फेल होते रहेंगे तो जैसे कहते हैं ना बाबा भी, फेल होने वाला तो कहां जाएगा, चंद्रवंशी ही बनेगा, बनने का लक्ष्य सूर्यवंशी, लेकिन बन जाते हैं चंद्रवंशी। तो कल हमारी चर्चा हो रही थी ब्रिजमोहन भाई के साथ बैठे थे हम, तो ब्रिजमोहन भाई को हमने कहा कि जो 108 की माला है, यह सिर्फ सतयुग की 108 की माला है या त्रेता अंत तक की 108 की माला है। क्या कहेंगे? ये 108 जो है राजाओं की, महाराजा तो 8 बनेंगे, लेकिन बाकी जो राजाएं हैं जिसकी ये 108 की माला बनी, ये सतयुग अंत तक की होगी या त्रेता अंत तक की होगी? सभी क्या कहते हैं? सतयुग अंत तक की है, यही कहा भाई साहब ने, विजयंती माला है। ये वारिस आत्माएं 108 जो है ये वारिस आत्माएं, तो इसीलिए कि वो विजयंती माला में चले जाते हैं। सतयुग अंत तक की ये माला है। त्रेता माने ही फेल, तो फेल की कभी माला थोड़ी होती है। तो फिर बात निकली कि जो त्रेता युग की आत्माएं जो है, चाहे राम सीता, वो सतयुग में साधारण पार्ट में भी होंगे या नहीं होंगे? साधारण प्रजा के रूप में होंगे या नहीं होंगे? माने दो मत हो गए ऐसे कि भाई इसने इतना पुरुषार्थ किया ना, तो सतयुग का सुख तो मिलना चाहिए ना उसको, साधारण प्रजा के रूप में ही देखना तो चाहिए सतयुग कैसा है। तो वो आत्मा सतयुग में आएगी साधारण प्रजा के रूप में भी या नहीं आएगी? त्रेता में तो राजा बना ना, तो वो सतयुग का सुख देखेगा या नहीं देखेगा? क्या कहेंगे? माना राम सीता वारिस नहीं है ऐसा? बहुत अच्छा जवाब दिया भाई साहब ने, कहा कि देखो कोई भी आत्मा जब ऊपर से नीचे उतरती है, फिर उसके बाद नीचे उतरती जाती है। ये नहीं कि नीचे का स्टेटस लेकर फिर ऊपर चढ़े कोई। नीचे का स्टेटस अगर साधारण प्रजा का या दास दासी का मिला, तो नीचे का स्टेटस फिर वो राजा में चढ़े ये नहीं हो सकता है। राजा फिर नीचे उतरता जाता है, इसलिए राम सीता की आत्मा कभी सतयुग में नहीं आएगी, साधारण प्रजा के रूप में भी नहीं आएगी। बहुत गहराई की बात बताई कि सतयुग वाले साले विजयी आत्माएं हैं, सारे के सारे विजयी आत्मा है, भले वो परसेंटेज हो गया, इसीलिए वो साधारण प्रजा दास दासी बने, है ना? लेकिन जो त्रेता की आत्माएं हैं, जो त्रेता में ही सीधी उतरती है, फेल हो गए जो, वो सीधी त्रेता में ही उतरेगी, वो सतयुग में नहीं होंगी। इसलिए वो 33 करोड़ एकदम जैसे बढ़ने लगी पॉपुलेशन। सतयुग की तो नीचे उतरी वही त्रेता में गई, वो तो गई ही गई, लेकिन ऊपर से जो नीचे उतरी वो 33 करोड़ फिर हो गए। कहा 2 करोड़ त्रेता के आरंभ में, 2 करोड़ और 2 करोड़ से सीधा 33 करोड़, तो वो आत्माएं सतयुग में नहीं होती है, फेल हो गई वो सारी। तो वारिस आत्मा कभी भी फेल नहीं होती है, वो हर कदम में विजयी का अनुभव करती है। और विजयी का अनुभव क्यों करती है? क्योंकि ज्ञान को समझते हुए, अप्लाई करते हुए, उसके आधार पर विजयी हुए हैं। भले जैसे दुनिया में कहा जाता है कि भले 40 मार्क से पास हुआ, लेकिन पास तो हो गया ना, परसेंटेज भले कम है, पास तो हो गया ना। फेल होना माना 35 से नीचे है, माना फेल, फिर 35 या 35 से नीचे को फेल ही मानेंगे। तो पास तो हो गया ना, इसीलिए वो भले दास दासी जाकर के बने, दास दासी बने, साधारण प्रजा बने, जो भी बने, पास तो हो गया ना वो। परसेंटेज वाइज भले परसेंटेज कम आया, लेकिन पासिंग परसेंटेज भी आ गया ना उसका। वो सतयुग में बनते हैं। तो कल बहुत अच्छी चर्चा चली हमारी, एक घंटा इसके ऊपर चर्चा चलती रही। बहुत आनंद आया चर्चा करने में, कि सचमुच अपने को भी क्लियर होता है कई बातें, कि चर्चा करें बिगर तो क्लियर नहीं होती है कोई बातें, क्योंकि बाबा ने तो अभी अंत तक सभी राज अभी और प्रकट करना है ना। तो इसीलिए कल हमारी बैठ करके यही एक घंटा चर्चा चलती रही। फिर और एक बात, चर्चा की बात सुनाओ, फिर सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन चर्चा में ये निकला, फिर भाई साहब ने सवाल पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, बोले कि अभी आप 100% पावन बनते हो, तो जो द्वापर युग से कलयुग तक के संस्कार है, वो सारे संस्कार क्लियर हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं? परम धाम में जब जाएंगे तो क्या समझते हैं आप? मर्ज हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। भाई साहब ने कहा जब स्लेट पूरी क्लियर हो करके जाएगी, पूरे पावन बन जाएंगे, तो संस्कार मर्ज क्या होता है? मर्ज माना तो अंदर अंदर रहे ना, बुरे संस्कार लेकर परम धाम जाएंगे। बोले बड़ी गुहे बात सुनाई, क्या बुरे संस्कार को मर्ज करके परम धाम जाएंगे आप? वो तो अंदर ही रहे ना। नहीं, यहां पावन बन गए माना पूरी स्लेट क्लीन हो गई, पावन हो गए। वो बताया बहुत अच्छा है, वही बात पर आ रही हूं मैं। आपने पहले से कैच कर लिया। फिर यही सवाल हमने भाई साहब को पूछा कि फिर जो बाबा कहते हैं हु बहु रिपीट होता है, कहा हु बहु क्या रिपीट होता है? तो कहा जैसे परमात्मा क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है ड्रामा के, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर कौन है? हम हैं, हम खुद हैं ना। तो हम जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अच्छे कर्म की, अभी पावन बनते जाते और अच्छे कर्म, वो स्क्रिप्ट जो हमने लिखी है, वो स्क्रिप्ट हूबहू रिपीट होगी, कोई पिछले कल्प वाला नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं 108 की माला में अगर ज्यादा नंबर हो गए तो बाबा लड़ियां लगा देगा, आप विजयी तो बनो। अगर पिछले कल्प वाला ही सब कुछ रिपीट होना हो तो कहां ये शब्द हु बहु को ब्राह्मण लोग ने अभी तक समझा ही नहीं है। वो हु बहु माना यही समझते हैं पिछले कल्प वाला हु बहु, नहीं अब भी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हु बहु, अभी जो हमने श्रेष्ठ कर्म किया तो वो श्रेष्ठ कर्म के द्वारा स्क्रिप्ट लिखी, वो जो लिखा वो हूबहू रिपीट होगा। समझा भाव को? भाव को समझा? जो लिखा है वो रिपीट होगा हूबहू, जैसा लिखा है वैसा हूबहू रिपीट होगा, पिछले कल्प वाला नहीं। चेंज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कल राज खुला। कल हमारा इतना डिस्कशन, एक घंटा जो डिस्कशन चला हमारा, बहुत जबरदस्त चला, बहुत मजा आई खूब। नहीं, वही भाई साहब ने कहा मक्खी उड़ी, बोले है ना, ये बात भी निकली कि मक्खी उड़ी। बोले मक्खी तो कभी भी उड़ सकती है, बोले उसमें नहीं अटको, बोले आप मक्खी में नहीं अटको। मेन बात है कि हमारी स्क्रिप्ट जो हम लिख रहे हैं वो इसीलिए बाबा बार बार हमें कहते बच्चे पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो। यहां तक बाबा ने कहा है कि बच्चे बाप से भी आगे जा सकते हैं, माना बाबा ने इतनी मार्जिन दे दिया है कि तुम जा सकते हो, करो तो सही, ब्रह्मा बाबा से ज्यादा करके तो दिखाओ, करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कहां होता है किसी से। उसने जिस तरह से वारिस अपने आप को बनाया बाबा का, और जिस तरह से बाबा को अपना ऐसा किसी ने बनाया आज तक, इसीलिए ब्रह्मा नंबर वन एक ही रहा कि दूसरा कोई ब्रह्मा बन नहीं सका, है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जैसा करके तो दिखाए कोई, कोई नहीं कर सका। बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन समर्पित करने के बाद भी, उसके बाद एक बार भी संकल्प नहीं आया कि ये सब मैंने समर्पित किया, मैंने बच्चों की सेवा में लगाया। वहां तक कि बाबा के बच्चों ने भी अगर कभी कहा, गलती से भी कहा जाता है कि नारायण दादा ने एक बार कहा लच्छु दादी को कि मेरे को शर्ट चाहिए, मेरा शर्ट फट गया है, तो लच्छू दादी ने कहा कि शर्ट दिखाओ, तो देखा तो कहा ये तो सिलाई करके तुम पहन सकता है, बेगरी पाठ चल रहा था, तो कहा तुम सिलाई करके पहन, या बेगरी पाठ शायद पूरा हो गया था, और उसने शर्ट मांगा और लच्छू दादी ने कहा ये सिलाई करके तुम पहन सकता है, उसके लिए नया शर्ट नहीं मिलेगा। तो उसको इतना गुस्सा आ गया कि मेरे बाप का सब कुछ है। लच्छू दादी ने जाकर के बाबा को यह सुना दिया। बाबा ने तुरंत उसको बुलाया, तेरा बाप का कुछ नहीं है, ये शरीर भी तेरा बाप का नहीं है, ये ब्रह्मा बाबा के शब्द थे, तेरे बाप का कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वाहा हो गया है। कोई कह सकता है आज की दुनिया में ऐसा अपने बच्चे को? तो ब्रह्मा बने तो सही कोई, माना उसके बाद संकल्प मात्र बाबा को ये नहीं आया कि मैंने ये सब कुछ दे दिया है, ये फीलिंग तक नहीं आना। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते थे, जब हिस्ट्री हॉल बना और पीछे कमरा बना दादी के लिए, और दादी जब रही वहां पर, सभी बच्चों ने कहा नहीं बाबा आप वहां रहो, बाबा ने कहा नहीं बाबा पुराने में ही रहेगा, बाबा पुराने में ही रहेगा, बाबा नए में, जबकि ऐसा कोई आलीशान नहीं बनाया था, है ना, दादी वाला कमरा जो अभी है वो कोई आलीशान नहीं था उस वक्त, लेकिन बाबा यही पुराने में ही रहा। ये पुराना भी अभी एक्सटेंड किया हुआ है पीछे का, आगे का जो है उतने ही 10x10 में बाबा रहा, 10x10 भी पुराने ही है शायद, हाँ पूछे में फल विभाग था। तो इसीलिए कहने का भावार्थ के बाबा बाथरूम भी नहीं था कमरे में अटैच, बाबा खुद बाहर जाता था रोज ठंडी में, इतनी ठंडी में बाबा जो जनरल बाथरूम थे उधर जाता था पीछे पानी का लोटा लेकर के, इस एज में भी 94-93 की एज में बाबा खुद जाता था, लेकिन एक अटैच बाथरूम तक बाबा ने नहीं बनवाया अपने लिए कि सब कुछ मेरा ही है ना, मेरे लिए एक बाथरूम बना दे वे, ये नहीं था। ये वारिस कि जहां अपनी संपत्ति भी इतनी सफल कर दी कि उसके बाद एक पैनी भी अपने प्रति यूज करने का संकल्प नहीं है, ये समर्पण, ये है वारिस क्वालिटी, है ना, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन की अगर इस आईने को लेकर के देखे तो ये था बाबा की संपत्ति को सफल करने की हाइट्स। आज दुनिया में भी ऐसा कोई गुरु नहीं कर सकता है। जगदीश भाई की बात याद आती है कि जब मैं पहली बार मधुबन दिल्ली से आने लगा, जब तो रास्ते में ट्रेन में कहा, मेरे मन में कल्पनाएं चलने लगी कि बाबा के पास जाऊंगा तो बाबा कैसा होगा, कोई गुरु की तरह होगा, बच्चों को ज्ञान दे रहा होगा, बैठे होंगे गद्दी पर बैठे होंगे और ज्ञान दे रहे होंगे और मतलब बाबा के प्रति कल्पना कर रहे थे जगदीश भाई कि कैसा होगा, बाबा से जाकर के मैं मिलूंगा तो उस समय बाबा कैसे बैठे होंगे, किस तरह से मिलना होगा, ये सब सोच रहे थे। कहा जब मैं आया 2:30 बजे पहुंचा मधुबन तो उस समय आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? तो कहा बाबा हाफ पैंट पहना हुआ था और क्योंकि बारिश के दिन पूरे हुए थे तो रास्ता पूरा धुल गया था, तो जो चढ़ता था, ऐसे चढ़ाई थी वहां ब्रिज कोठी में चढ़ाई थी, तो कहा रास्ता पूरा जब धुल गया था मिट्टी तो चलने में फिसलते थे, लोग फिसलते थे। तो दोपहर के समय में सारे बच्चे सो गए और बाबा हाफ पैंट पहन करके मिट्टी डाल करके वो जो सीमेंट का बना हुआ होता है ना दबाने वाला, ऐसे मिट्टी को दबाने वाला वो दबा रहा था। बोले मैं सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा बाबा और ये बाबा कर रहे दोपहर के समय में, जब सारे बच्चे सो गए तो बाबा ये मिट्टी दबा रहा था। कहा मुझे समझ में नहीं आया कि मैं बाबा को मदद करूं, बाबा ये कर रहा है तो मैं बाबा को मदद करूं या स्नान करने जाऊं, और भूख इतनी लगी थी तो खाना खाऊं, क्या करूं मैं। मैं खड़ा हो गया और मैंने बाबा को कहा बाबा ये दे दो मेरे को, मैं करता हूं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम सफर से आए हो, जाओ पहले स्नान कर लो, स्नान करके भोजन करो, फिर रेस्ट करो, शाम को मिलना। बाबा ने करने नहीं दिया। ये बाबा थे वारिस क्वालिटी। तो बाबा ने हर काम करके सिखाया। आज दुनिया का कोई गुरु ऐसा कर सकता है? बाबा की ग्रेटनेस देखो हर बात में, कि दुनिया का कोई गुरु ऐसा नहीं कर सकता है, ये बाबा की ग्रेटनेस थी। ये वारिस क्वालिटी है आत्मा, जहां निश्चय बुद्धि और नशा, ये काम करने में भी नशा बाबा का, कि बाबा बच्चों के लिए कर रहा है, बच्चे आएंगे, कोई का पैर फिसलना नहीं चाहिए, कोई का ये नहीं होना चाहिए। कितनी कल्याण की भावना बाबा की है अंदर में। ये नहीं बाबा आज किसी बच्चे को कहते थे तो कोई मना थोड़ी करता था, आप कर लो, ये रास्ता ठीक कर लो, खुशी से ही करते थे, लेकिन बाबा ना खुद करते थे। और सारे बच्चे सोए हो, बाबा अकेला कर रहा था, जगदीश भाई के अनुभव में ये बात सुनने को मिली कि बाबा खुद वो ठोक ठोक करके जैसे रास्ता पक्का कर रहे थे। ये पहला दृश्य जब बाबा, तो बोले मैं कुर्बान गया, दिल से कुर्बान गया बाबा के ऊपर का। ज्ञान तो सुना ही था लेकिन जो बाबा के ऊपर कुर्बान जाने की ताकत जो मिली, ये दृश्य देख करके मिली। कितनी बड़ी पर्सनालिटी, भगवान का रथ, और वो रथ क्या कर रहा है? बोलो, हम लोगों से ये होगा? इसीलिए 10% और 99% हो गए, इसीलिए ये परसेंटेज हो गए। और ये परसेंटेज होने के कारण ही जो बाबा कहते हैं कि कुर्बान जाना, बलिहार जाना, बाबा जो बार बार याद दिलाते हैं मुरलियों में, तुमने भक्ति में कहा था कि आप आएंगे, हम कुर्बान जाएंगे, हम बलिहार जाएंगे, अभी तक अपने संस्कार को बलिहार नहीं कर पा रहे हैं। तो वारिस क्वालिटी माना बलिहार जाना, संस्कारों से बलिहार जाना, है ना? तो इसीलिए कहा ये 5 स सफल करना। संपत्ति को जिसने सफल किया उसका फ्रूट क्या है? संपत्ति को जो सफल करता है, धन को बाबा के कार्य में जिसने सफल किया, तो वो तो सतयुग में तो मिलेगा ही मिलेगा। बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले की एक मुरली में कहा कि यहां वहां रत्नों की थालियां भर भर के मिलेगी, यहां धन सफल करते वहां रत्नों की थालियां तुम्हें मिलेगी। लेकिन जो यहां भी सफल करता है ना, बाबा ने एक कहा कि अभी थोड़े समय पहले बाबा की एक अव्यक्त मुरली पड़ी थी, तो उसमें बाबा ने कहा कि उसका 84 जन्म में से एक जन्म भी भिखारी का नहीं होगा। ये भगवान इतना रिटर्न में देता है कि जिसने अपना धन सफल किया, संपत्ति सफल किया, पूरे 84 जन्म में, चलो 21 जन्म तो वहां के है ही है, लेकिन जो 63 जन्म है वो 63 जन्म में भी एक भी जन्म भिखारी का नहीं होगा। इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है, सोचो। ये बाबा के महावाक्य है कि उसका कोई जन्म भिखारी का नहीं होगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना धन सफल किया है बाबा के कार्य में, तो धन के भिखारी नहीं बन सकते हैं। तो वारिस बनना, और नहीं बन रहे हैं खाली सफल कर रहे हैं तो भी अगर इतनी प्राप्ति हो, तो वारिस बनने के बाद तो कितनी प्राप्ति होगी, सोचो। इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा की जीवन को देखते हैं कि लास्ट जन्म में भी इतना धन बाबा के पास, कि जब राजा महाराजाओं के पास जाते थे और इतनी रॉयल्टी बाबा के अंदर थी कि राजा महाराजाओं के पास जब जाते थे, वो राजाएं कहते थे कि भगवान से गलती हो गई, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, हमें बना दिया। तो बाबा क्या कहते थे, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जो अपने पांचों स को सफल करते हैं, तो पूरे कल्प में उसकी जो गति है, इतनी श्रेष्ठ गति हो जाती है। ये बाबा के महावाक्य है ना। तो ये है वारिस क्वालिटी के लक्षण। बाकी तो और भी बहुत है, लेकिन क्योंकि आपका आगे का क्लास भी है, इसीलिए जो है मैं यही समाप्त कर। लेकिन आप सोचना इसके ऊपर, इसलिए मुख्य बात तो फिर भी मैंने बताई कि जब आप इतना सफल कर रहे हैं तो क्या से क्या बन जाते हैं, है ना। विजयंती माला में आने के योग्य तो बन ही जाते हैं। इसलिए बाबा कहे के बच्चे, तुम हर कर्म करते, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हो याद रखना, हर कर्म कर रहे हो, कर्म से ही स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, और तुम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। इसलिए अगर बाबा इसलिए कई बार कहते हैं बच्चे, इस जन्म में भी कई बार, कई लोग सोचते हैं हम चालाकी से चलते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसा चलते हैं वैसा, लेकिन सोचो वो अपनी स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं। इसलिए हम अपनी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखे, हर समय इतना कॉन्शियस रहे, हम अपनी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखे कि अगले कल्प में वही हू बहु फिर रिपीट होगी। जब तो द्वापर के बाद भी जो हमारा पाठ चलेगा वो बहुत ही अच्छा रहे, यही अंदर की शुभ भावना है ना ऐसा। तो इसीलिए वारिस आत्माएं जो है मुख्य, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, कुर्बान जाना, समर्पण भावना, ट्रस्टीशिप की फीलिंग, जो सोचा हुआ था वो सब बातें थी, लेकिन उसके ऊपर आप लोग सोचना कि ट्रस्टीशिप भी किसको कहा जाता है, समर्पण की भावना किसको कहा जाता है, वो है वारिस क्वालिटी आत्माओं के लक्षण। अच्छा, ओम शांति।